اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دورِ قرآن 2023 DQ 2023. آج اس میں ہم کنٹینیو کریں گے پارہ نمبر 27. قال فما خطبکم، اس میں صحابہ کرام کی جو خوبی ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے ففروا الی اللہ. ان کی دوڑ دھوپ نیکیوں کے لیے تھی، اور ہمارے لیے بھی اس بارے میں جو رول ماڈل ہیں وہ نیکیوں میں دوڑ دھوپ کرنے والے صحابہ ہیں، جن کی نظر ہمیشہ نیکی پہ رہتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارہ جنبش کے منتظر رہتے تھے، اور وہی نیکی زیادہ کرے گا جو پہلے سے تیار ہوگا. آپ کے میرے لیے اس میں موٹیویشن کیا ہے کہ ہم اپنی اس مختصر سی زندگی میں جتنی جلدی نیکیوں کا سفر شروع کر دیں اتنا ہی زیادہ جمع ہوگا. ظاہر ہے کہ ایک دکان جلدی کھول لے اور ایک دیر سے کھولے تو جو جلدی کھولتا ہے یقیناً اس کے پاس کسٹمر زیادہ ہوں گے. دوسری بات کیا ہے کہ اگر ہم زندگی کی کچھ بہاریں گزار چکے ہیں اور نیکیوں کا سفر اب سامنے آ رہا ہے، نیکیاں تو بہت ساری ہمارے پاس پہلے بھی تھے، لیکن قرآن حقیقت میں انسان کو ایک ایسی نگاہ دے دیتا ہے کہ جس کے بعد وہ بہت زیادہ حساس ہو جاتا ہے اپنی نیکیوں کے بارے میں. تو پھر اتنا تیز کیجئے. اگر میں اپنی اس بات کا سم اپ کروں، اپنی عمر چیک کریں، جب خاص طور پہ قرآن آپ کو شعوری طور پہ سمجھ آیا. اب آپ کی عمر اگر 30+ ہے تو آپ بھی بھاگیے، 40+ ہے تو تھوڑا اور بھاگیے، 50+ ہیں تو پھر تو ہم پہ آپ کہیں کہ پہلے ہی نہیں چلا جاتا، گھٹنوں میں دردیں پہلے ہی بڑی ہیں، ہمارے سے بھاگ دوڑ نہیں ہوتی. نہیں، اب آپ سے زیادہ ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ جب مہمان آنے والے ہوں نا تو اس وقت بھاگ دوڑ زیادہ قریب ہوتی ہے، تیز ہوتی ہے، تو تب بندے کو تھکن بھول جاتی ہے، کٹ لگ رہے ہیں نہیں لگ رہے، بس کہے بھاگو بھاگو. ایک مہمان بن بلایا آئے گا، ہمیں نہیں پتا وہ چل پڑا کہ نہیں، کیا پتا کہ وہ آج ہی رات تک پہنچ جائے، آج ہی دن میں آ جائے. تو ففروا الی اللہ، وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے. آپ کی میری گنی چنی سانسوں میں سے بھی بہت ساری گزر گئی. ایک ایکٹیویٹی کرنا چاہیں تو کر لیجئے گا، بعد میں اپنی عمر لکھیے، کتنے سال کی ہیں آپ، ان سالوں کو 12 سے ضرب دے کر مہینے لکھیے، مہینوں کو پھر 30-29 کا ایک ایوریج بنا کر چلے، 30 پہ ہی ضرب دیکھ کر سوچئے کہ آپ کی زندگی کے کتنے دن گزر گئے. پھر اس کو 63 ایئر کے سالوں اور مہینوں اور دنوں میں سے مائنس کریں، یہ ہے لیفٹ اوور. اس میں اپنے کام کرنا. ہم سب کی ایوریج ایج 63 ہے، وہ بھی اللہ لے جائے وہاں تک تو بڑی بات ہے. تو لہٰذا ہم ایسے ہی کریں گے. اور آج ہم ادھر جس صورت سے شروع کریں گے وہ صورت الرحمن ہے. بہت ہی محبت کی جاتی ہے اس صورت سے. 55 نمبر کی سورہ، 78 آیات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں پہ جو صورتیں اس میں یہ دوسری صورت ہے. اس سے پہلے ہم صورت فاطر پڑھ چکے اور اب صورت الرحمن ہے، اور ہم ان 78 آیات میں کئی آیات تو ریپیٹیشن کی پڑھیں گے. اور رحمان کا سب سے بڑا رحم کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان، والشمس والقمر بحسبان. رکوع نمبر 11 ہے، آیت 1 سے 25، 1-25. رحمان کے احسانات، اور سب سے پہلا احسان رحمان نے قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا. آفتاب و ماہتاب مقررہ حساب سے ہیں، اور ستارے اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں. اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھی تاکہ تم تولنے میں تجاوز نہ کرو، یعنی ڈنڈی نہ مارو، کم یا زیادہ نہ کرو، انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کم نہ دو. اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی جس میں میوے ہیں اور خوشے والے کھجور کے درخت ہیں اور بھوس والا اناج ہے اور خوشبودار پھول ہیں. بس اے انسانوں اور جنوں، فبأی آلائی ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. یہ ہے پوری سورت کا میسج، نعمتوں کا اظہار ہے. نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت قرآن، اور اس کے بعد کائنات میں پھیلی ہوئی خوبصورت چیزیں. تم کیا کرو، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو. بتاؤ تو صحیح، کس کو جھٹلاؤ گے؟ اب دیکھیں، یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ تم کس کس نعمت کا شکر ادا کرو گے. अगर आप इस आयत के लफ्ज़ों पे गौर करें ना, फ़बीअय्यि आलाई रब्बिकुमा तशकुरान, तुशकुरान, शुक्र करोगे, होना क्या चाहिए था कि तुम अपने रब की किस किस नेमत का शुक्र करोगे, तो ये तो पॉजिटिव था। लेकिन यहाँ डांट है तो कज़ीबान, और जुटलाओ, शाबाश, और मेरा बच्चा, और बोलो, और शरारत करो, ये अंदाज़ है। अब सुनिए, उसने इंसान को बजने वाली मिट्टी से पैदा किया जो ठीकरी की तरह थी, और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। बस इंसानों और जिन्नों, तुम अपने परवरदिगार की किस किस नेमत को झुटलाओगे? और रब है दोनों मशरिकों का और दोनों मगरिबों का। बस इंसानों और जिन्नों, तुम अपने परवरदिगार की किस किस नेमत को झुटलाओगे? इसने दो दरिया जारी कर दिए जो एक दूसरे से मिल जाते हैं, इन दोनों में एक आड़ है कि इससे बढ़ नहीं सकते, यानी एक बैरियर है। फबीअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? इन दोनों में से मोती और मूंगे बरामद होते हैं, बस अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? नोट करें आप, नेमत नेमतों नहीं, एक नेमत सिर्फ, बाकियों का तो हिसाब ही पीछे है। जी, हर अल्लाह ही की मलकियत में है जहाज जो समंदरों में पहाड़ की तरह बुलंद चल फिर रहे हैं, बस अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? तो ये है सूरत रहमान। रहमान का लफ्ज़ रहम से निकला है, मदर वूम, यूट्रस, वो जगह जहाँ बड़ी मोहब्बत से बच्चे को रखा जाता है, और माँ चलती फिरती उठती बैठती है लेकिन बच्चे को कुछ भी नहीं होता। तो अल्लाह ने उस मोहब्बत को आपके मेरे करीब कर दिया कि बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला, बहुत परवाह करने वाला, केयरिंग लॉर्ड, और मुस्तकिल भी, और रहमान, कतफान, अतशान, तूफान, ये जो वजन होता है ना अरबी में, इसमें जोश, ऐसे फवारा नहीं उबलता, यानी उसकी रहमत तुम्हारे लिए जोश खा रही है। आप देखिए कि अल्लाह ताला के इस खूबसूरत नाम पे अगर आप गौर करें ना, तो अल्लाह के चोटी के नामों में से एक नाम है। अल्लाह ताला का असल नाम अल्लाह है, इसको कहते हैं ज़ाती नाम। बाकी सिफाती हैं, अर्रहमान के लिए भी अक्सर उलमा और मुफस्सरीन कहते हैं कि ये भी अल्लाह ताला का असली नाम है, और पीछे आप पढ़ कर आए बमर रहमान, ये रहमान क्या होता है भाई? अरबों की रौनत थी क्योंकि लफ्ज़ रहमान को नहीं जानते थे। सूरत मरियम और ताहा में जाकर देखिए कितनी कसरत से ये नाम है, तो क्या पता चला कि चोटी का नाम अर्रहमान, उसने चोटी का इल्म दिया कुरान की सूरत में। आप इस वक्त PhD से बड़ा इल्म ले रही हैं, आपको पता है? आप रेंगुलर की डिग्री से बड़ा काम कर रही हैं दौरे कुरान करके, ये खेल नहीं है। वमा हुआ बिल हज़ल, सूरह तारिक में पढ़ेंगे आगे हम इंशाल्लाह, ये हज़ल नहीं है, इसको डोंट टेक इट वेरी वेरी नॉन सीरियस, और नॉन सीरियस ना भी सही, हम इसकी वर्थ पहचान लेना, तो हमें एक महीने में सिर्फ अगर एक आयत समझ आ जाए और वो भी ना पूरी हो तो भी काफ़ी है। ये देखिए हम क्या ले रहे हैं, और ये इतना बड़ा कलाम, ये सीने के अंदर एक समंदर को डालना और फिर उसको निकलना, और इंसान क्या है? चोटी की मखलूक, अशरफुल मखलूकात, लक़द खलकनल इंसान फ़ी अहसानी तकवीन, वलक़द करमना बनी आदम, और कुव्वत गोयाई, बोलने की ताकत, अल्लामहुल बयान, चोटी की सलाहियत जो इंसान को बाकी तमाम मखलूकात से मुमताज़ करती है। चार आयतों में कायनात की चार बेहतरीन चीज़ों का तذکرہ आपने मैंने पढ़ लिया, चोटी का नाम, चोटी का कलाम, चोटी की मखलूक, और चोटी की सलाहियत, चोटी से मुराद दी बेस्ट। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए, यह हज़रत उस्मान से रिवायत है बुखारी में 1817, इसी तरह से तिर्मिज़ी की रिवायत है 3291, जाबिर रावी हैं। अल्लाह के नबी अपने सहाबा के पास आए और उनके सामने सूरह रहमान शुरू से आखिर तक पढ़ी, ये लोग चुप करके सुनते रहे, तो आपने वो जिन्नों वाली बात की कि मैंने उनके सामने पढ़ी, तो उन्होंने फबीअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान के आगे ला बिशय मिन निअमिक रब्बना नुकज़्ज़िबु फलकल हम्द। आज इस हदीस पे भी कुछ शुबा है, बड़ी मारूफ रिवायत है, शुरू से सुनते आ रहे हैं, जिस दिन कन्फर्म हो गया कि इसकी सनद ठीक नहीं, उसको बयान करना छोड़ देंगे, ये हमारा मसलक है। वक्त के साथ इल्म पे तहकीकात और तखरीजात जो हो रही हैं, तो उसमें से वो जैसे एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं निकाली जाती, तो अल्लाह ने हर दौर में अपने कुछ बंदे चुने हुए जो अहादीस पे काम करते हैं। लेकिन अगर ये बात दुरुस्त भी है, तो हमें भी यही कहना है कि अल्लाह, हम तेरी कोई नेमत ही जुटला सकते और तेरी सारी तारीफ़ें। करना क्या है? इसको पढ़ के अल्लाह की नेमतों का शऊर हासिल करना है, उसकी नेमतों को जुटलाना नहीं, कुरान सीखना है और इसको फिर बयान करना है इंशाअल्लाह ताला, और इसके काबिल बनने के लिए बीच में मेहनत के रास्तों से गुजरना है। رکوع نمبر 12 26 سے 45 ہے. اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے. کل من علیہا فان, زمین پر جو ہیں سب فنا ہونے والے ہیں, صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے باقی رہ جائے گی. سوچیے کیسا لگا یہ جملہ, سب ختم ہو جائے گا جی, سب ٹوٹ جائے گا, سب پھوٹ جائے گا. سعید انجروزہ ہر جمعہ اس رکاو کے شروع میں آپ 6-7 نمبر آئے تھے اس میں پڑھتے ہیں, ہم اس زمین کو جروز کر دیں گے, بلڈوزر چل جائیں گے. ایک لمحے کے لیے اپنے گھر کی ایک ایک چیز کو دیکھیے, قیمتی ڈنر سیٹ, کل من علیہا فان, بہترین جوڑے. ماسی سے ایک جل گیا تو کیا ہوا, سارے ہی جلنے والے ہیں. ایک انڈیا جل گئی تو کیا ہوا, ساری جلنے والی ہیں. ایک نقصان ہوا تو کیا ہوا, سب نے فنا ہونا ہے. کتنا سکون ملتا ہے دکھ اور تکلیف پہ, اور کتنا سکون اور حوصلہ آتا ہے کوئی نئی چیز خریدتے وقت, چھوڑو ایک دفعہ پہن کے یہ بھی ایسی ہو جانی ہے دے دو. یہ ہے وہ سوچ جو بندے کو سیدھا کرتی ہے. انسان کیا تمہیں اتنی بے برکتی ہے کہ ما عندکم ینفد, پیچھے پڑھ کے آئے ہیں, اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے. بس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے, سب آسمان و زمین والے اسی سے مانگتے ہیں. ہر روز وہ ایک شان میں ہے, یعنی ہر روز وہ نئے کام میں. کتنے لوگ اس وقت بھی مانگ رہے ہوں گے حرم میں دعائیں, بیت المقدس میں کتنے رو رہے ہوں گے, مسجد نبوی سے لے کر دنیا کی ہر مسجد, اور دکھی بیمار ہاسپٹلس میں, پریشان کینسر وارڈ کے باہر بیٹھے ہوئے اپنے لوگ, اپنے رشتہ داروں کی بیماریوں پہ, اور اللہ سب کی سن رہا ہے. شان, ایک تو شان ہماری شان ہوتی ہے نا, یہاں کام ہے بہت بزی ہے, وہ اس کے باوجود کیا کہتا ہے, فیضا صاحلہ کئی بات یہ نہیں ہو اتنی قریب. ہم تھوڑے سے مصروف اور مشہور ہو جائیں, لوگ کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں آپ کے, جھوٹ بولتے ہیں ہم, وقت ہی نہیں ملتا. نہیں, وقت ہے, ضائع کرتے ہیں ہم, ہمارے پاس ٹائم کی مینجمنٹ نہیں ہے. جن اور انسانوں کے گروہ ان قریب ہم تمہاری طرح پوری طرح متوجہ ہو جائیں گے, پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اے گروہ ہے جناتوں ان سکر, تم میں آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جانے کی طاقت ہے کسی میں تو نکل بھاگو. بلائیے ناسا والوں کو, اسپیس شٹل بلائیے, بڑی بڑی انہوں نے جو مشینیں تیار کی ہیں لے جاؤ, بغیر غلبے اور طاقت کے تم نہیں نکل سکتے. لہٰذا فبی علی ربکما تکذبان, بس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. پھر جب آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے گا, شفق کا وقت یاد کیجیے, کہ جیسے سرخ چمڑا, پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے. اس دن کسی انسان اور اس کے جن سے اس کے گناہوں کی باز پرس نہ ہوگی, کیونکہ پہلے ہی پتا ہوگا کہ کیا کر کے آئے ہیں, کیا کارنامے کیے ہیں, پوچھتا تو اس کے لیے جس کا پتہ نہ ہو. پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. گناہ گار صرف خلیے ہی سے پہچانے جائیں گے, اور ان کی پیشانیوں کے بال اور قدم پکڑ لیے جائیں گے. یہ جو پیشانی ہے نا, یہاں سے پکڑ کے نا تو بالوں کو نیچے لے جائے گا, اور اس پہ پوری ریسرچ موجود ہے, میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں سناؤں گی. یہاں بھی پیشانی کا ذکر ہے, اور لنسفن بن ناسیہ سورۃ الق, یہ حصہ ہے جو ڈیسیجن میکنگ کرتا ہے. یہ حصہ انسان کا بہت بڑا ہوتا ہے اندر سے, اس کی وجہ سے آپ کی میری چوائسیز, ڈیسیجنس, پسند ناپسند اور فیصلے ہیں. جانوروں کا یہ حصہ بہت چھوٹا ہوتا ہے, بکری اور مینڈا کسی کو یاد کیجیے, اس لیے ان میں ڈیسیجن پاور نہیں ہوتی, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے کیا کرنا ہے. کل انعام, ایسے لوگ بھی جو دنیا میں اچھے فیصلے نہیں کر پاتے اور وقت پہ نہیں کرتے, یا کر کے ڈولتے رہتے ہیں, یا پھر ان سے آج تک ڈیسیجن ہی نہ ٹھیک ہوا, ان کا یہ حصہ ویک ہے. اللہ کہتا ہے تمہاری یہ ڈیسیجن پاور والی جگہ کو پکڑ کے تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا, اور یہ کرتے ہیں ہم سجدے میں نیچے کہ یہ رکھو اللہ میرے سارے فیصلے تیرے آگے, میری ساری وعدات, میری نسلاتی و نسخی اور اتحیات للہ. کون اس قرآن کا مقابلہ کرے؟ ہم نے بھی صرف پانی کے اوپر سے گزر کے نا, ایسے جیسے وہ چڑیا کے پتلے پتلے پاؤں ہوتے ہیں نا, پانی پہ بیٹھ بھی جاتی ہے اور اٹھتی ہے تو سوکھے ہی نکلتے ہیں, قطرہ سا لگ جاتا ہوگا نیچے نیچے. ہاتھی جیسا موٹا جانور ڈالے تو پورے ڈوب جائے گا. ہم نے صرف چڑیا کی چونچ سے کم کیا, اس کے عشر اشیر سے چھوٹا علم لیا ہے ابھی دور قرآن میں, اور پوری دنیا کا علم اللہ کے علم کے آگے اتنا جیسے چونچ میں آیا ہوا پانی, اور باقی اللہ بس یہ کرسی السماوات والارض, اور کیا کہا, ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, اس کے تو علم کے خزانوں میں سے کوئی چرا ہی نہیں سکتا. तो अभी तो चखा भी पूरा नहीं है और वक्त पूरा हो गया। दुआ करिए अल्लाह, हमें डुबकियाँ लेनी है इस इल्म में और रात से खून न फिर इल्म बनना है, और जितना इल्म ज़्यादा लगेंगे आपको अपना पिछला इल्म कम लगेगा। शुरू में मुझे भी अपना इल्म बहुत लगता था, जब कभी मैंने एक दफ़ा दो बार पढ़ के पढ़ाना शुरू कर दिया मुझे लगता था मुझे बहुत आ गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कभी हिर्स नहीं ख़त्म हुई। अल्लाह हमें इल्म की तलब लगा दे, प्यास लगा दे, चावल की फसल बना दे जो हर वक्त पानी में डूबी रहना चाहती है। फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने परवरदिगार की किस किस नेमत को झुठलाओगे। ये है वो जहन्नम जिसे मुजरिम झूठा जानते थे, क्या कहते थे देखा जाएगा, वो कुछ नहीं होता, ये झूठी बातें, ये मौलवी डराते बहुत हैं, कोई जहन्नम वगैरह नहीं है, सारा कुछ तो निकाल दिया जहन्नम के नाम पे लोगों ने कुरान से, आज भी लोग नहीं पसंद करते, कहते जहन्नम की बातें ना किया करें। एक टीचर सिर्फ इसलिए फायर कर दी गई एक इस्लामिक स्कूल में से कि उस पर इल्ज़ाम था कि ये बच्चों को जहन्नम की बड़ी स्टोरियाँ सुनाती है, तो फिर वो बच्चे तो मस्तियाँ करेंगे ना, और इसके और खौलते हुए गर्म पानी के दरमियान चक्कर लगाएंगे। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुठलाओगे। क्या सीखा? नेमतों का शौर हासिल करना है, अल्लाह की नेमतों को नहीं झुठलाना, और जितनी भी नेमतों का इसमें तذکرہ हुआ है हमने इनको अल्लाह के कुर्ब का जरिया बनाना है इंशाल्लाह। रुकू नंबर 13, 13, 46 से 78 आखिरी रुकू है सूरत रहमान का। अल्लाह की अजमतों पे गौर व फिक्र करना है। वली मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, और उस शख्स के लिए जब अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा उसके लिए दो जन्नतें हैं। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। दोनों जन्नतें बहुत सी टहनी और शाखों वाली हैं। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। इन दोनों जन्नतों में दो बहते हुए चश्मे हैं। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। इन दोनों जन्नतों में हर किस्म के मेवों की दो किस्में होंगी, और इस शख्स के लिए जो कि अल्लाह से डर गया। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। जन्नती ऐसे फर्शों पर तकिया लगाए हुए होंगे जिनके अस्तर, अस्तर क्या होता है अंदर का कपड़ा, दबीस मोटे रेशम के होंगे। हम अंदर कॉटन डाल देते हैं, मोटा सस्ता कपड़ा डालते हैं, ऊपर अच्छा नरम सा रेशमी कवर डाल देंगे, अल्लाह कहते हैं उसका अस्तर मोटे रेशम का होगा, जैसे रॉ सिल्क कह लें या जो भी आप समझ लें सॉफ्ट से सॉफ्ट चीज़। और दोनों जन्नतों के मेवे बिल्कुल करीब होंगे। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। वहाँ शर्मीली नीची निगाह वाली हूरें हैं जिन्हें इनसे पहले किसी जिन्नो इंस ने हाथ न लगाया होगा। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। वो हूरें मिसल याकूत और मूंगे के होंगी। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। हल जजाउल एहसान इल्लल एहसान, सोचिए एहसान का बदला एहसान के सिवा फिर और है भी क्या। बस अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। और इनके सिवा दो जन्नतें और भी हैं। बस अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। वो दोनों गहरी सब स्याही माइल, बस अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। इनमें दो जोश से उबलने वाले चश्मे हैं। बस अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। दिल में कहते जाएं कि अल्लाह किसी नेमत को नहीं झुटला सकते। इन दोनों में मेवे और खजूर और अनार होंगे। बस अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। इनमें नेक सीरत खूबसूरत औरतें हैं। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। गोरी रंगत की हूरें जन्नती खेमों में रहने वालियां हैं। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। इनको हाथ नहीं लगाया किसी इंसान या जिन ने इससे कबल। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। सब्ज मसनदों और उम्दा फर्शों पर तकिया लगाए हुए होंगे। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। तबारक अल्लाह अहसनुल खालिकीन, क्या कहा? तेरे परवरदिगार का नाम बबरकत है जो इज्जत और जलाल वाला है। पूरी सूरत में क्या रंग गालिब है अंदाज तकजीब का, लेकिन किससे जन्नत के हैं। नोट कीजिएगा ये बात, कभी शायद आपने नोट की है कि नहीं, जहन्नम का बहुत कम जिक्र है जन्नत के तस्करे, तभी तो इसकी तिलावत बहुत लोग शौक से सुनते हैं, और फल फ्रूट है, कायनात पे गौर व फिक्र भी है। इसी की आयत 46 पे एक हदीस ले लीजिए, बुखारी की रिवायत 4878, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो जन्नतें चांदी की होंगी और इनका तमाम सामान भी चांदी का होगा, और दो जन्नतें सोने की होंगी और इनके बर्तन और जो कुछ इनमें है वो भी सोने का होगा, और इन जन्नतियों में और दीदारे इलाही में कोई चीज़ हायल ना होगी सिवाय इस किबरियाई के पर्दे के जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के चेहरे पे है। ये जन्नत अदन में होंगे। तबारक अस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम। अल्लाह हमें जन्नत अदन में भी लेके जाना। अल्लाह हमारे वहाँ हर दर्जे में घर बना दे जैसे दुनिया में तूने बनाए। में हम जन्नत अदन में भी जाना चाहते हैं, हम जन्नत फिरदौस में भी जाना चाहते हैं, हम माबा में भी जाना चाहते हैं, हम मुंतहा और हर जगह जाना चाहते हैं। और मैचिंग जन्नत है, कभी दिल करता है आप हर चीज़ सिल्वर रंग की पहने, कभी दिल करता है गोल्डन पहने। तो अल्लाह ताला हमारे इस टेस्ट का ख्याल रखना। हम एक जैसी चीज़ से तो वैसे भी घबरा जाते हैं ना, एक से दो दिन एक ही चीज़ खानी पड़े तो शौक़ कम होने लगता है। पहला कप रहमत, दूसरा शौक, तीसरा जहमत, चौथा सज़ा आइसक्रीम का। पूछ के देख रहे हैं बच्चों से कितने को कप खाने हैं। तो क्या पता चला कि दुनिया में तो हमारी नेमतों से फ़ायदा उठाने की सलाहियत भी बड़ी महदूद है, लेकिन जन्नत में अल्लाह सलाहियतें बढ़ा देगा। इसी तरह एक और रिवायत है हूर लफ्ज़ पे। इब्ने अब्बास कहते हैं कि हूर के मानी काली आंखों वाली, और मुजाहिद ने कहा मकसूरात यानी आंखें झुकाई हुई, इसके मानी इनकी निगाह और जान अपने शौहरों पर रुकी हुई होगी। अपने शौहर के सिवा किसी का तसव्वुर भी दिल में नहीं आएगा उनका। उरुबन अतरौबा पढ़ेंगे तीसवें पारे में इंशाल्लाह। वो अपने खामिंदों के सिवा और किसी पर आंख नहीं डालेंगी। खासीरात के मानी अपने खामिंद के सिवा और किसी की ख्वाहिश मंद न होगी, और फिल खियाम खेमों में महफूज होंगी। जाइए जन्नत का बयान बुक खोलिए और उसमें जन्नत की औरतों वाला टॉपिक पढ़ लें। दिल ही नहीं लगेगा इस दुनिया में मैं जल्दी से जाऊँ। शादी से पहले लड़की क्या ख्वाब देख रही होती है शादी वाले दिन के, कैसी हूर परी लगूंगी, क्या कपड़े। यही होता है ना शौक, हमें तो यही शौक था शादी से पहले, अच्छे कपड़े पहनेंगे और अच्छे लगेंगे और ये और सैरें बोंगी ना, ऐसी होता है ना। आप जन्नत का तसव्वुर करें आपका इस दुनिया में दिल नहीं लगेगा। सहाबा और सहाबियात का यही था कि वो नेकियों में दौड़ धूप क्यों करते थे, उनको जन्नत की तलब थी। आपको पता है ना कि आपको ये सब मिलना है। अब यहाँ एक सेल लगनी होती है तो कैसे लोग भागते हैं, बेहोश बेहोश हो फिरती हैं। मैंने सुना है औरतें कि जी वो 70% लगी तो फिर तो फौत भी हो जाएंगी एक दो, और उतने ही ज़्यादा ले आएंगी पैसे, उतने ही लेके जाती हैं मियाँ साहब से, उनको कोई खुश होने का हक नहीं है। एक लाना तो उसकी जगह चार चार ले आएंगी, है ना, और एक दफ़ा बहन के दिल भर जाएगा। जन्नत के लिए कितनी तड़प। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें दौड़ धूप करने वाला बना दे। अब बाकी ज़िंदगी में चलना नहीं है, भागना है, दौड़ धूप। जो सो रहा है जाग जाए, जो लेटा हुआ है वो उठ के बैठ जाए, जो बैठा हुआ है वो खड़ा हो जाए, जो खड़ा हुआ है वो चलने लगे, जो चल रहा है वो दौड़े, और जो ऑलरेडी दौड़ रहा है वो भागे हम पे हत्ता कि हम जन्नत में पहुँच जाए। रेडी गो, 1 2 3 गो। भाग लगा देने क्यों में, सुस्ती नहीं चाहिए, एक्टिवनेस लाइए अपने अंदर। एक वक्त में दो काम सीखिए, अपने वर्क को मैनेज कीजिए, अपने घरों को मैनेज कीजिए, बच्चों को टाइम दें। 15 मिनट में वो क्वालिटी टाइम दे दें जो दो दो तीन तीन घंटे में भी नहीं दे पाते। अल्लाह आपकी सलाहियतों में बरकत डाल देगा, आपके वक्त में बरकत, आपकी जवानी में बरकत। आप जवानी में ये काम शुरू करें आप कभी बूढ़े ही नहीं होंगे। आपके थोड़े से इल्म को अल्लाह काफ़ी कर देगा, आप उसके ऊपर अल्लाह से राज़ी होते जाइए। तो क्या सीखा कि खूबसूरत बनना है, खूबसूरत भी बनना है। कोई बुरी बात है खूबसूरत बनना? नहीं बुरी बात, तो खूबसूरत भी बनना है, किसका ख्वाब नहीं। हदीस में तो जन्नत की औरत इतनी हसीन होगी कि जब वो शरबत पिएगी ना, अब ये ना सोचे कि मैं रूह अफ़ज़ा या जामशीरी होगा, वो तो पता नहीं क्या पिलाना है उस मालिक ने। उसकी शान तो देखिए, आज किसी बड़े बंदे के घर चले जाएं वो क्या क्या आपको पिलाता है, आप कहते हैं हमने तो कभी ये बर्तन भी नहीं देखे, हमने तो ये कभी खाया पिया नहीं। और जो वो पिलाएगा जिसने सारी दुनिया को और कारून और फिरौन और हमान तक को दौलत दी, वो क्या बर्तन होंगे जिसमें आपको दिया जाएगा। लेकिन वो जो पिएगी ना अंदर सुरख पानी, तो वो उसके जिस्म में ऐसे झलकेगा जैसे क्रिस्टल के मोती सुरख डोरी में पिरोए हों। क्या हुसन होगा आपका, अपने आप को विजुलाइज किया करें। हमने ना जन्नत के बारे में सोचना छोड़ दिया, बेयकीनी का है कि ये पहला नुक्ता होता है। आप कहते छोड़ो ये कौन सा होना है, ये कहाँ होना है। किसी बच्ची से कहना तुम्हारी शादी होगी ये होगी, वो मायूस बैठी होगी कहेगी छोड़े कब होनी है, मेरी नहीं शादी होनी। हम आज जन्नत के बारे में नहीं सोचते, इसका अंदर हमारे अंदर से यकीन कम होता जा रहा है। और सहाबा को ये यकीन था, इसलिए फ़फ़िरु इलल्लाह। कोई नेकी बाद में सामने आती, लब्बैक हज़रत अबू बकर से दी, रात सोने से लेके फजर तक इबादत भी कर आए, किसी का घर भी साफ कर आए और सदका भी दे आए, नफिल भी पढ़े होंगे, तहज्जुद भी पढ़ी होगी, वितर भी पढ़ा होगा, फजर की सुन्नतें भी पढ़ी होंगी, क्योंकि उनको पता था कि हमारी ज़िंदगी में वक्त कम है। अल्लाह की अजमतों पे गौर करना है, उसकी नेमतों को नहीं छुटलाना, और अल्लाह की प्यारी प्यारी जो सिफात हैं उसको मानना भी और جو اس کے انعامات ہیں اس کے انکار سے خود کو بچانا ہے. تو سورۃ الرحمن پوری ہوئی, کیا پیغام دے کر گئی آپ کو مجھے, اپنے اندر کی اور اپنے ارد گرد کی نعمتوں کو پہچانیے اور اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیے. آئیے اپنا محاسبہ کرتے ہیں, کیا مجھے اللہ تعالیٰ کی تمام بیان کردہ نعمتوں کا شعور ہے؟ کیا میں جنت اور جہنم میں جانے والے اعمال سے بخوبی واقف ہوں؟ میری کوششوں کا رخ کدھر ہے؟ بھاگ دوڑ تو میں کر ہی رہی ہوں مگر کدھر, کس میں؟ 27ویں رات کے بعد مسجدیں خالی ہونے لگی. رمضان 27ویں رات کے بعد ختم نہیں ہو جاتا. کسی نے کہا کہ 28ویں رات کو پارکنگ لاٹ میں فیو کارز تھیں اور سب نکل گئے اپنی بیویوں کو عید کی شاپنگ کرانے بازاروں کی طرف. 27ویں رات کی مسجد کے کراؤڈ کو آخری راتوں کے بازار کے کراؤڈ سے ریلیٹ کر کے دیکھ لیجئے گا, تب پتہ چل جائے گا کہ ہم 27ویں کا روزہ تو نہیں چاہتے, 27ویں کی تو نہیں چاہتے. اسی لیے کہتے ہیں ختم کر دو قرآن. میں کہتی ہوں نمازیوں کو 30ویں دن پورا کرنا چاہیے قرآن کو تاکہ آخری دن رونق تو ہو. ہم کہتے چلو ختم کرو جلدی, پھر عید کی تیاریاں کر لیں. یہ عید تھوڑی ہے ہماری, اور کیا ہے کہ عید کے دن بھی آ جاؤ پھر کے. عید کے دن مسجدوں میں نہیں جائیں گے مرد؟ کیا نمازیں نہیں پڑھیں گے؟ کیا مومن کو چین آ سکتا ہے آکسیجن لگائے بغیر؟